ओम शांति। आज का टॉपिक है दैहिक दृष्टि का मोतियाबिंद। तो उसके पहले हम स्थूल नेत्रों के बारे में जानते हैं। मैं आई डिपार्टमेंट में गया था, थोड़ा पूछताछ की, तो ये मोतियाबिंद क्या है, तो उसको भेद करने की कोशिश की है। ये जो आंखें हैं ना हमारे नयन, ये एक भगवान की तरफ से है, बहुत बड़ा अनमोल गिफ्ट कहो तोहफा कहो। ये कुदरती प्राकृतिक लेंस की तरह हमारी इस देह में काम करता है, तो उन्होंने ऐसे बताया। नेट पर भी इसकी काफी जानकारी है, वो देख सकते हैं, लेकिन हमारा उसका फोकस रहा उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो जिसके जरिए हम, जैसे इसी के आधार पर वो लौकिक में कैमरा बने हुए, विज्ञान ने इसमें बहुत सफलता पाई है, कैमरा है, टीवी है, काफी सारे दूरबीन है, आंखों के उसको सामने रखते हुए उन्होंने उसको बनाया गया, उसमें सफलता पाई गई है, जिसके जरिए हम आंखों के जरिए ही दूर की भी नज और करीब की भी उसको अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। नहीं तो ये आंखें नहीं तो कुछ नहीं। तो ये, लेकिन ये जो हमारी आंखें हैं, इसका बहुत इस शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसको नियंत्रित करने वाली जो हमारी मांसपेशी है हमारे शरीर में, वो हमारे बाकी शरीर की सभी मांसपेशियों से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दिमाग के बाद आंखें ही हमारे शरीर का सबसे जटिल संरक्षण वाला अंग है। इसमें ज्यादा उसकी, जैसे बजट में होता है ना, सबसे पहला किसको दिया जाता है, रक्षा, सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए सबसे पहला उसको वो निकाला जाता है बजट। ऐसे हमारे पूरे शरीर के अंगों में से पहला सभी मांसपेशियां 65% दिमाग की पूरी एनर्जी उसको लगती है, उसको यूज होता है। तो किसी, लेकिन ये एक विशेषता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भाई हो या बहन हो, कोई भी शरीरधारी की आंखें जो होती है वो समान ही होती है, बड़ा छोटा नहीं होता है। बाकी उसमें देखभाल के अनुसार उसकी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो आकार है उसका वो सेम होती है उसमें। हाँ, गोल गोल, ये पूरा अगर देखेंगे ना, उसने दिखाया मेरे को पूरा एक सृष्टि गोल जैसा दिखाई देता है, पूरा अंदर एक निखल के जैसे दिखा, बोला आप देखोगे ना अच्छी तरह, सूक्ष्मता से दिखाया उसने, बहुत बड़ा एक ऐसा लग रहा था ग्लोब है, पूरा घूम रहा है अंदर। तो हम देखते हैं, एक बार व्हाट्सएप में आया था, कैसे देखते हैं कितना अंदर से, वो अंदर से दृष्टा दृष्टि द्वारा कैसे देखता रहता है दृष्टांत। तो दृष्टिकोण के आधार से हम लोगों को अच्छी बुरी सब दिखाई देता है, उसी के आधार से हम आकलन करते, उसी के आधार से व्यवहार होता है। उसमें लिखा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये आंखें हैं, इसी के आधार से हम संसार के रंग बिरंगे सब नजारे देख के उसका आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। तब तो कहते हैं कि ये तो नैनों का नूर है, नूर नहीं तो जहान है, नूर है तो जहान है, आंखों का तारा, ऐसे कई उसमें उपमा दी गई आंखों के लिए। ऐसे महत्वपूर्ण अंग का हम कितना ध्यान रखते हैं, कैसे देखभाल करते हैं, ये तो हर एक अपना अपना जानते हैं, और ये हर एक के ऊपर है। अब मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है, इस बीमारी का नाम है एक मोतियाबिंद। ये अधिकतर 55 वर्ष की आयु के बाद ही पाया जाता है, 40 तक नंबर आ जाता है, लेकिन कई बार ये कम उम्र में भी देखा जा रहा है। अभी भाई ने सुनाया कि जाते रहते हैं विलेज में, कम उम्र के भी इसमें जाते हैं, युवा भी आजकल सुरक्षित नहीं है, इसलिए आजकल ये सामान्य समस्या बन गई है एक आज की दुनिया की, क्योंकि खान पान रहन सहन सारा बिगड़ गया। और अगर इस रोग का समय रहते इलाज न किया जाए तो इस आंखों की रोशनी से हम हाथ धो सकते हैं, मतलब ये रोशनी नहीं रहेगी, फिर अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। जैसे 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 उम्र बढ़ता रहता है, ये दूसरी बात, ये क्यों होता है मोतियाबिंद, तो वो उसका जो आंखों का लेंस है उसका जो पारदर्शिता का जो क्षमता है वो कम होती रहती, मतलब उसका मोटापा बढ़ता रहता है, उसके कारण फिर हमारे को आंखों के सामने पर्दा सा धुंधला सा नजर आता है। तो सामने जो भी देखने में जो बाहर से प्रकाश आंखों के ऊपर आना होता है और उसकी अवरुद्ध आ जाता है, इसको देखने में फिर कठिनाई हो जाती है, नहीं तो फिर बहुत किसी साधन का वो करना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। और इसमें मोतियाबिंद इसमें दो प्रकार है, एक सफेद मोतिया कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं और जो काला मोतिया जो ग्लूकोमा कहते हैं। सफेद मोती का समय रहते अगर पता चल जाए इसका ऑपरेशन करके ठीक कर दिया जा सकता है, और जो ब्लैक है ग्लूकोमा काला पानी बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं इसका बहुत ये होता है कोमल, वो होता है कठोर। उसको ऐसा क्यों मैं पूछा, उसका इलाज होता है इसका नहीं, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई वो कठोर हो जाता है सफेद मोतिया का ही। उसने बोला कि नहीं इसका कोई इलाज बहुत रेयर, ऐसा कभी कहीं हुआ तो उसकी पुण्य की पूंजी अगर जमा हो तो किसी डॉक्टर से हाथ बोलते हैं ना, इसका हाथ बहुत अच्छा है, नहीं तो कितने भी स्पेशलिस्ट के पास इधर उधर जाके देखा। हमारे यज्ञ में उदाहरण है यूके के रतन दादा, उन्होंने बहुत कोशिश की, आपने देखा ना क्लास में कैसे उनको सारा मैंने देना पड़ता है, बाकी ऐसे खुश है वो, सब कुछ करने के बाद आप स्वीकार कर लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी जो कारण हो सकता है, रुक्मिणी नारी हाँ वो तो रिसर्च नहीं किया, वो तो पूछा नहीं मैंने, वो संगम पर हमको ही हुआ था, आगे बता रहे हैं हम सब उसी के शिकार हैं, उसी को ठीक करने के लिए बाबा आए, सुप्रीम सर्जन आए हैं। तो रात में तो इनको बहुत दिक्कत होती देखने में, जब इस प्रकार आंखों की बात आती है तो इस समस्या को हम कितना गंभीरता से लेते हैं और उसको नजरअंदाज करने से क्या उसका परिणाम होगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम अभी ये बीमारी होती क्यों है, इसके लिए क्या ध्यान रखे। उन्होंने बोला चार पांच बातें सुनाई उसका कारण। एक तो जैसे दिवाली होती है फटाका उड़ाते हैं आवाज करते हैं तो उसका कोई चिंगारी आंखों में लग जाता है, तो कारण ये भी है। और बहुत समय से धूम्रपान शराब पीने से भी ये हो सकता है। फिर दूसरा कारण बताया कि अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, जैसे एज का बताया बुढ़ापा में भी होता ही है, हमारे फादर का यहाँ किया था इधर हॉस्पिटल में सफेद मोतियाबिंद का, तो उन्होंने बोला कितना रुपए का डालना है, 12,000 का 5,000 का 25,000 का, तो हमने बोला इसमें भी वो होता है क्या, तो हम संगम पर भी उसको भेंट कर किया है मैंने आगे, तो इतने साल तक चलेगा, तो हमने हिसाब लगाया पिताजी कब तक रहेंगे। तो उसको मैंने बोला ऐसे तो मतलब 77 एज हो गया था, तो उसने बोला 12,000 का लगाएंगे तो 25 साल चलेगा, मतलब 93 में बाबा गए थे 100 साल हम अंदाजा पकड़ेंगे तो ये डाल सकते हैं, तो उसको ऐसा बोला था हमने, तो उन्होंने वही डाला था, बोला ये विदेश का है अच्छा है, मतलब जो अच्छा है वो डाल दो। लेकिन ऑपरेशन के बाद 4 साल के में चले गए। सफेद मोतिया और काला मोती जैसे बताया कि इसमें बहुत अंतर है, उसमें ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, इसमें नहीं कर सकते हैं। अब हम इसको ज्ञान की रीति से कैसे लेंगे, जब सुप्रीम सर्जन बाबा संगम पर आते हैं हम सभी उसी के शिकार थे, क्या क्या समझ रहे थे अपने को, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, इस वर्षन में हम लोग सब आंखें हमारी बदली हो गई थी, भावनाएं बदली हो गई थी, इसी के चक्कर में थे। तो बाबा आकर के हमको क्या किया, किसी बहन के द्वारा किसी भाई के द्वारा हम लोगों का साप्ताहिक कोर्स के द्वारा ऑपरेशन किया और तीसरा नेत्र का वो लगा दिया, प्राकृतिक की जगह कृत्रिम लगा दिया, कृत्रिम आंख, क्योंकि संगम पर सूक्ष्म मतन और तीसरा नेत्र ये टेम्पररी है, 100 साल के लिए ही है, उसके बाद नहीं मिलेगा, जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो नेचुरल रहेंगे। तो उसमें ये मैंने सोचा है कि अगर जगदीश भाई भी कहते थे जो भी बहन जिस भी आत्मा का कोर्स करती है तो बहुत एक सर्जन की तरह करना चाहिए, थोड़ा भी मिस्टेक अगर रह गया तो वो हमेशा के लिए रहेगा उस आत्मा के लिए, कुछ भी उसकी समझने में समझाने में कमी रही होगी तो उसका जिम्मेवार उसकी माँ होती है, वो माँ का रूप उन्होंने उसको दिया और एक सर्जन का रूप भी दिया, कितना ध्यान से करते हैं ऑपरेशन, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो तो पब्लिक भी उसको वो करेगी, कमेंट करेंगे और उसके लिए फिर हम अधूरा काम करते हैं, ऐसा हो जाता है। बहुत ध्यान रखना चाहिए। टीचर बहनों को एक ऊपर 4 सब्जेक्ट के ऊपर क्लास कराया था उसमें, और जो ओम शांति में क्लास मुरली क्लास के बाद बाहर आते थे, बाहर खड़े रहते थे, पार्टी को कौन कैसे समझा रहा है, बाबा सुपरवाइजिंग करते थे, जैसे कहते हैं ना सुपरवाइजिंग करना चाहिए, तो सुपरवाइजिंग करते थे और बुला के उनको बाद में पूछते थे, फिर करेक्शन करते थे, समझ देते थे उनको। कहने का तात्पर्य कि ऑपरेशन जो होता है तीसरे नेत्र की बात है, तो हम लोगों का सबका अभी तीसरा नेत्र का वो भूलना नहीं चाहिए, हमारा ऑपरेशन हो गया है, लेकिन वो फिर से हम ध्यान में रखने से कितना नुकसान होता है, वो मोतियाबिंद क्या है वो मैं आगे लिखा है बताएंगे। जैसे निखिलेश भाई ने कल बताया, शुरू शुरू में जब ज्ञान में आते हैं तो क्या होता है, छोटा बच्चा जो होता है सबको प्यारा लगता है, उसकी नजर न लग जाए उसकी माँ काजल किधर भी लगा दे चेहरे पर, लेकिन फिर भी वो अच्छा ही लगता है बच्चा। तो इसी कारण हम जब बाबा के बच्चे सेंटर पर जाने लगते हैं, नए नए होते हैं, अरे वाह ये भी बहुत अच्छा, ये भी बाबा का प्रॉपर्टी का मैंने अधिकारी बने, बहुत अच्छा आया, नया नया है, सब प्यार करते हैं, उसके गुण अवगुण कुछ सब मतलब देखते हुए भी नजरअंदाज करके उसको चलाते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे वो जैसे बाबा बोलते हैं ना, उम्र बढ़ती बढ़ती पारदर्शिता का कम हो जाता है, मोटा हो जाता है, और यहाँ कम हो जाता है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध सब बढ़िया स्पष्ट रूप से हमको भी अनुभव होता है, उनको भी लगता है बहुत अच्छा है ये पुरुषार्थ, बहुत आगे जाएगा, वैसा संकल्प भी करना चाहिए बाबा बोलते हैं। सहज अनुभव होने लगता है, जो भी बाबा ने संयम नियम मर्यादाओं रूपी दवाइयां कहो परहेज कहो, डॉक्टर बोलते हैं ना ऑपरेशन के बाद ये ध्यान रखना, ये ड्रॉप बार बार डालना और ये परहेज रखना, ये सब बताते हैं ऑपरेशन के बाद। तो वो यहाँ जो भी बाबा बताते हैं उसके अनुसार चलना करना सब अच्छा लगता है और कर भी पाते हैं, करते भी है। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि रूपी आंखों में जो तीसरा नेत्र कृत्रिम रूप से लगाया है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें कमी कमजोरी इसकी उसकी यहाँ की वहां की बातें सुनने देखने में आती है, धीरे धीरे क्लोज आते आते तो हमारे आंखों का पर्दाफाश, जो पर्दाफाश मतलब जो भी होता है भाई असली असलियत पता पड़ता है, ऐसे बोलते हैं, अभी पता पड़ा, अभी तक तो नहीं पता चला, फिर धीरे धीरे हमारा डस्ट वो जो मोटापा उधर मोटापा बढ़ता है पारदर्शिता का, और इधर पतला हो जाता है, कम हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ये दिखाई नहीं देता है। हम किसके लिए आए थे ये भूल जाते हैं, स्वचिंतन स्वदर्शन भूलना मन मोतियाबिंदु होना शुरू, यहां से शुरू हो जाता है, फिर डस्ट पड़ने लगती है तो फिर सब थोड़ा थोड़ा कम अच्छे लगने लगते हैं, सब भाई बहन अपने सहित इस मार्ग में चलना मुश्किल लगता है। इसके बीच दो दवाइयां डॉक्टर ने बताई है, बताई थी जो परहेज बताई थी वो भी कम करने लगते हैं, वो भी नहीं हो पाता है, वो भी समझ में नहीं आता है कौन करता है कौन किया है, कौन सी आंख तीसरा नेत्र कुछ जो बाबा कहते तीसरे नेत्र त्रिलोक की नाथ हो त्रिकालदर्शी हो तो तुम्हारे से कोई भी अकर्म नहीं हो सकता, विकर्म नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, कायदा ये है। लेकिन वो हमारी आंखों में जो डस्ट पड़ने से क्या होता है दिक्कत आने लगती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर डॉक्टर के पास गए कोई भी बीमारी के लिए बताने के लिए तो क्या होता है वो भर्ती करते हैं पहले, ऐसा कुछ केस हो भाई आपको एडमिट होना पड़ेगा तभी हम अच्छी तरह से आपको समय देके इलाज कर सकेंगे, अगर आपको इस बीमारी से मुक्त होना है तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम ऑपरेशन कर मना एडमिट होके हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ऐसी अभी भर्ती चल रही है। तो इस तीसरे नेत्र के लिए कौन सा अस्पताल है जी, अभी जो भट्टी है तो इस प्रकार से भट्टी में अगर हम स्वनिरीक्षण करते हैं, स्वराज अधिकारी कितना बने हैं इसकी जांच पड़ताल करते हैं, अपना डॉक्टर अपनी नहीं तो जैसे अनुभवी डॉक्टर हैं प्रैक्टिकल सब यहाँ डबल डॉक्टर बैठे हैं ज्यादातर इस क्लास में, तो उनसे हम राय सलाह पूछ सकते हैं, स्थूल भी सूक्ष्म भी क्या कमी दिखाई देता है ओपन, ऐसे तो सुप्रीम सर्जन से कुछ छुपता नहीं है, ओपन बताएंगे ना तो ट्रीटमेंट भी क्या करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम अनुभवी भाई बहनों रूपी डॉक्टरों से मिलके उनके उनसे इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करते हैं तब फिर ये दैहिक दृष्टि का प्रदर्शन और परचिंतन रूपी मोतियाबिंद हो जाता है, यहां से शुरुआत होती है धीरे 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 फिर पतन की ओर वो बढ़ने लगता है। प्रदर्शन है, प्रदर्शन कौन सा मोतिया है, सफेद मोतिया क्या ट्रैक्ट है ये, और परचिंतन जब नेचुरल हो जाता है प्रदर्शन करते 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 बुद्धि में वही एंगल बन जाता है सबका, कुछ किसी का अच्छा नहीं लगता है, अच्छा व्यक्ति को भी लगता हाँ कहीं तो वो तो भगवान में भी दोष निकालेंगे, ऐसा वो परफेक्ट हो जाते हैं, उसमें परफेक्शन आ जाता है क्योंकि अभ्यास है ना बहुत काल का, तो वो उसने समय रहते इलाज नहीं किया ना, उसने सोचेकिंग नहीं किया, सोच चिंतन करते करते पर चिंतन शुरू होते 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 फिर वो पक्का हो जाता है, कोमल से कठोर हो जाता है, तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं, मोतिया ग्लूकोमा के रूप में हो जाता है। इसी को बाबा ने कहा है कि अव्यक्तवाणी में बहुत भयंकर क्या खतरनाक शब्दों में वार्निंग के रूप में दवाई कहो, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये बहुत क्रिटिकल है, इसको इस प्रकार से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। तो बाबा ने कई अगस्त वाणियों में कुमार के कुमारियों के भट्टियों में बहुत स्ट्रिक्टली वार्निंग के रूप में शब्द उच्चारण किया महावाक्य, किसी के प्रति भी अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है तो इससे क्या होगा, दृष्टि बाधित हो जाती है। भगवान वाच, तो हमारी दृष्टि मन यहां से शुरुआत होती है, अर्थात बाधित हो जाती है, अर्थात तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। शंकर के लिए कहते हैं आंख खोला तो विनाश, और यहां हमारा आंख बंद होता है तो अपना विनाश। किसका विनाश, जो इतनी मेहनत करके 4-5 साल से 10 साल से स्थिति बनाई थी उसका विनाश। विकास हमारा रुक जाता है, सुस्थिति समाप्त हो जाती है। भाई कभी कभी बाबा बोलते हैं कि भाई बहनों की दृष्टि में भी दाल नहीं गलती है, भाई बहन की भी, इसलिए क्या समझो, सब भाई भाई समझो। दाल नहीं गलती बोला, दृष्टिवृत्ति चंचल होती है, सूक्ष्म, ऊपर से माना पता तो पड़ता है ना, वाइब्रेशन से तो पता पड़ता है, इसलिए बाबा खुला बता रहे। फिर उसमें क्या हो जाता है, स्वस्थिति समाप्त होने से क्या होता है, दिव्य बुद्धि से तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, निज स्वरूप की स्मृति स्पष्ट अनुभव होता था पहले, अभी नहीं होगा, बंद हो जाता है। पुरुषार्थ में तीव्रता तो छोड़ो, पर पुरुषार्थ शब्द का जो गुह्यता बताई, अर्थ बताया बाबा ने, वो जैसे कि गायब हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही कोई उमंग उत्साह, ना ही कोई योजना किसी बात के लिए। फिर महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है, अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप का या कुछ भी रियलाइजेशन न होना ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है बाबा के ज्ञान की अवहेलना की, बाप की अवज्ञा की। मैं समझता हूं कि यही मोतियाबिंद का ज्ञान के हिसाब से इसको ऐसे में ट्रांसफर किया है, यही बीमारी है सूक्ष्म हमारे बीके का। ये सभी को मैंने देखा है, कुछ परसेंटेज में कम ज्यादा हो सकता है, इसका इलाज समय रहते कर लेना चाहिए, नहीं तो संगम का समय थोड़ा सा है फिर हम कुछ देख नहीं पाएंगे। हम नक्कीले की तरफ एक देखते हैं, एकदम बेचारा ऐसे ऐसे करके चलता है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी, वो बेचारा कितना वंचित है संसार में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपनी सेवा भी नहीं कर सकते खुद। तो हम अपना ये मोतियाबिंद न हो, कौन सा मोतियाबिंद, तीसरा नेत्र बंद न हो, पर चिंतन पर दर्शन न हो, स्वचिंतन स्वदर्शन करते रहे उसके लिए। अब इसका इलाज क्या है, क्या हो सकता है, आंखों पर बेवजह दबाव डालने से बचाना है अपने आप, अननेसेसरी ध्यान से देखना कोई मतलब नहीं, इन आंखों से दृष्टि से कोई विकर्म न हो जाए ये ध्यान रखना, अनुमान और शक की दृष्टि से और व्यर्थ देखने से परहेज करना चाहिए। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना ये किसका काम है, बाबा ने बताया नहीं, जिस ने आजकल बोलना भी मना है, गुनाह है, उसके लिए भी फिर क्लाइंट हो जाएंगे। हाँ, पहले जमाने में ऐसा बोल सकते, जिसम से जिसम को देखना बंद करें, ये दवाई है एक प्रकार से, टैबलेट 1-2-3, जिसम तरफ देखते हुए भी नहीं देखना, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बार भामती की कहानी बताई तो बहुत अच्छा लगा था हमको, 8 दिन तो बहुत अच्छा रहा, वो इतना अच्छा कौन, कितना एकाग्रता होगी, वो भारी नहीं उसको, अपना भी पर दूसरे का भी, इतनी एकाग्रता हो तो ये संभव है। जिसम को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही क्या होता है, रूहानियत आ जाती है, सुभावना आ जाती है एक दो के प्रति। अपने आप को स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि हमें बात तो आत्मा से ही करना है ना कि शरीर से। काम किससे है, कार्यभार कौन करता है, शरीर थोड़ी करता है। पहला पाठ क्या है हमारा, तुम देह नहीं देही हो, आत्मा हो, शरीर नहीं। तो कार्यभार भी आत्मा से ही करना है, तो हर सेकंड क्या करना है हमको, इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उसी को देखना है, और उसी से संबंध माना उसी दृष्टि से देखना है, तब भी हम आत्माभिमानी बनेंगे और यही मोतियाबिंद रोग का ऑपरेशन या दवाई करने जैसा हो जाएगा ट्रीटमेंट। कभी कोई अनुचित बात को देखते सुनते भी अपना दृष्टिकोण न बदले। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे दिवाली का सुनाया मैंने, अच्छा पुरुषार्थ करते रहते हैं, अच्छा सेवा करते रहते हैं, कभी कोई ऐसा पुराने बीके का या नया बीके का ऐसा ही डिसर्विस देखते हैं तो लगता है कि ये उसके जैसे चोट लग जाती है तो उसकी भावना बदल जाती है, सारा पुरुषार्थ फिर ठंडा हो जाता है। अरे उसने भी ऐसा किया, अब उसको चोट लगी तो मेरे को लगना जरूरी है क्या, या लगाना जरूरी है अनुभव करना? ये शब्द तो हाँ, ये नजरिया एक बार व्हाट्सएप में आया था, अपनी नजरिया बदलो तो नजारे बदलेंगे। तो इस प्रकार की बातें हमको ध्यान में रख के उसमें हमको कन्वर्ट नहीं होना, उसके साथ मिलना नहीं। दूसरा बाबा कहते शुद्ध पवित्र संकल्पी हम ब्राह्मणों का क्या है, बुद्धि का भोजन है, और पवित्र दृष्टि क्या है, हम ब्राह्मणों का आंखों की रोशनी है, पवित्र कर्म हम ब्राह्मण जीवन का धंधा है। तो इस आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाना है। श्रेष्ठ परिवार है तो क्या करना है हमको, आपस में हम सब श्रेष्ठ परिवार के संबंधी है तो क्या करना है आपस में, श्रेष्ठ दृष्टि रखना है। जैसे बाप दादा आते हैं कितना प्यार से स्नेह की दृष्टि से देखते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं, कितना महासुखकारी का अनुभव होता है हम सबको। तो हमको भी हम आपस में स्वयं पहले अपने प्रति करें, फिर आपस में भी ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। कई भाई बहन सुनाते हैं कि जब पुराने भाई बहन सुनाते हैं, दीदी जब दृष्टि देती थी तो आंखों से पानी निकलता था, जो कमजोर आत्माएं हैं जो आंखों में कुछ गड़बड़ होगी तो आंखों से पानी निकलता था, दृष्टि नहीं ले पाते थे बोलते। जैसे कहते हैं ना हजारों सूर्यों से तेजोमय, हजारों सूर्यों से तेजोमय का अर्थ एक बार निखिलेश भाई ने बताया था बहुत अच्छा। हजारों सूर्यों से तेजोमय का मतलब माने हजारों बार स्मृति आत्मा और परमात्मा की याद, श्वासोश्वास अजपा जाप बोलते ना, अगर इतना स्मृति है और पवित्रता इतनी ऊंची कोटि की है तो हमको आत्मा बाबा कहते ना चमक चमत्कार नहीं नमस्कार बोलते हैं ना कुछ, तो भाई क्या कुछ ऐसा दिखाओ जादू तो ताली बजाते हैं लोग। तो ये चमत्कार हमारे को, आत्मा जितनी हमारी चमकेगी हम चमत्कार का अनुभव करा सकेंगे। तो हजारों सूर्यों से तेजोमय ये बात है इसमें। ज्ञान को हम जितनी गहराई से अनुभव में लाते हैं, धारण में लाते हैं, उतना दूसरों पर उतना छाप डाल सकते हैं, इसका मतलब यही होगा ना। अब परमात्मा प्रॉपर्टी को इस मायावी आंखों से न देखा जाता है न पाया जा सकता है, लेकिन हम अभी इन खजानों को दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु से देख रहे हैं, समझ गए हैं और पा भी रहे हैं। अगर इसके बीच हमारा तीसरा नेत्र बंद हो जाए तो सब रुक जाएगा। इस तरह की शुद्ध सात्विक स्मृतियों का सामग्री साथ में हो तो कुछ पौष्टिकता मिलेगी आंखों को पवित्र दृष्टि रखने में। जैसे कहते हैं ना डॉक्टर लोग, भाई आंख को ठीक रखने के लिए गाजर का जूस पियो, तो ये न्यूट्रिशियन है। अच्छे अच्छे संकल्प बाबा के महावा के दृष्टि के बारे में क्या क्या कहा है तो नोट करके अपने पास जेब में रखे, ऐसा दृष्टिवर्ती कहीं चंचल होती तो रिवाइज कर सकते हैं, एक न्यूट्रिशियन का काम करेगा। फिर स्थूल नजर कम होने का कारण क्या हो सकता है, ऐसे जनरली बोलते ब्रेन वर्क ज्यादा है, कंप्यूटर वर्क ज्यादा है इसलिए। अच्छा यहाँ बाबा ने क्या बताया, नहीं पुराना लगाओ, वही वही राग, वैराग नहीं वही राग पुराना वाला, वो यहाँ आए लेकिन रूप बदला, वही मैं वही मेरा लेकिन रंग रूप बदली किया, इस कमरे से उस कमरे में आए, बस इतना ही फर्क है। पुराना स्वभाव वाली आत्मा ऊंची नजर से नहीं देखने का परिणाम है। ये बाप दादा के समान सबको सदा श्रेष्ठ भावना की दृष्टि से न देखने का परिणाम क्या है, नजर हमारी कमजोर हो जाती है। जैसे आंखों की नजर कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक चीज की बजाय दो दो दिखाई देता है। तो यहाँ क्या होता है उसका, उसी कंफ्यूजन में फिर वो किसी का सहारा लेना पड़ता है, चश्मे का नहीं तो फिर कोई साथी भैया दिखाओ ये कितना है क्या है, उसको बताना पड़ता है कितना उंगलियां दिखाते हैं, आदमी तो दो दो दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या के बजाय दूसरे रास्ते भी देखते रहते हैं, सूरज भाई का क्लास अच्छा है या शिवानी बहन का क्लास अच्छा है, सचिन भाई का क्लास अच्छा है या किसका, मेरे को किसी ने पूछा भी ये सब यश राशि के है, शिव बाबा भी यश राशि का है, तो किसी का भी सुनो कोई एक बात भी करो सब कवर हो जाएगा, सब अच्छा है। तो ये रास्ता ठीक है, इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, अपना तीसरा नेत्र बंद है ना, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते, सब राशि ठीक है, कोई भी राशि का एक बात अपन में लाओ सब कवर हो जाएगा, सब अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कमजोर आत्माएं भी एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते भी देखते रहते हैं, एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती उनको, एक श्रीमती ऊंचा बनाती, श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, भगवान वास फाइनल है। अब इसमें दूसरा कंक्लूजन क्यों आए? फिर सोचते हैं कि ये करे या वो करे, ये मना, ये दो प्रकार के संकल्प मना, दो दो दिखाई देना, वो कमजोर है ना। हाँ, ये यथार्थ है वा वो यथार्थ है, इस प्रकार व्यर्थ और कमजोर चंचलता का आधार होने के कारण कभी कहीं अटकेंगे, कभी कहीं लटकेंगे और लास्ट में भटकेंगे। भटकेंगे वह नीचे गिरेंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना भक्ति भी गई भगवान भी गए। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चों के नजदीक की नजर कुछ ढीली कमजोर है, वो दूर की नजर तेज है। कईयों का नजदीक का नंबर होता है, कईयों का दूर का। नजदीक का नजर कौन सा है? वही स्वचिंतन स्वदर्शन। बाबा ने कहा स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, इसकी जगह दूर की नजर हमारी तेज होती है। दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना। दूसरों को बाबा मना नहीं किया, देखो, लेकिन क्या देखो? वो कैसे बाबा को पहचाना, किस विशेषता के कारण भीखे बना, कैसे सेवा में सहयोगी बना, कहां तक उसकी समझ है, कितना। अभी एक आध कमजोरी थी, उसी एंगल से सारा उसमें मिला देना अच्छा नहीं हो। दूर की कमजोरियों को देखने की नजर धोखा देती है। अगर साक्षी होकर बेहद की नजर से देखेंगे तो अपनी भी जो विशेषता है और दूसरों की भी विशेषता है वही दिखाई देगी, और साथ में कमी भी दिखाई देगी, दोनों दिखाई देगा। साक्षी दृष्टा मना ऊपर का, लेकिन उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। कमियों को तो नजरअंदाज करना है अपना भी और दूसरों का भी, विशेषताओं को तो एडॉप्ट करना है। बाबा कहते तुम्हें तो अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है या नजर से निहाल करना है, वह इस दृष्टि से आत्माओं और प्रकृति को पांचों तत्वों को पावन बनाना है। तो सोचो कितना हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, और हम कहेंगे दृष्टि ऐसी वैसी होती है। भाई टाइम कितना हो गया? इसलिए ये आंखें कभी क्रिमिनल न हो जाए ये ध्यान रखना है। तो ज्ञान के बहुत ही महीन कायदे होते हैं, ये जो ज्ञान है ना हमारा बहुत महीन कायदे हैं, और ब्रह्म ज्ञानी को ये सब कायदे अटेंशन में नेचुरल रहते हैं। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी होगा उसका अन्य की तरफ कभी दृष्टि जाएगी ही नहीं, इसलिए वो क्या होगा, परचिंतन से बचा रहेगा, उसको मोतियाबिंद कभी नहीं हो सकता है। 93 तक ब्रह्मा बाबा को चश्मा नहीं था तो मोतियाबिंद नहीं था, दादी को है, लेकिन दादी का क्या, वही छोटे बच्चे का सुना है, चश्मा लगाओ तो भी अच्छा लगता है, नहीं लगाओ तो भी अच्छा लगता है, उसको दोनों चलता है तो ठीक है, लगाओ नहीं तो नहीं। तो इसे ब्रह्मज्ञानी को मना कोई भी परचिंतन में अटैक मन प्रभाव में नहीं आएगा, इसलिए स्वयं के तरफ ही दृष्टि दोहराना है, न कि दूसरों के तरफ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। दिव्य दृष्टि बिगर मनुष्य किसके समान है? अंधे के समान है। आत्मज्ञान के साक्षात्कार के बाद अगर कोई कहे हमें हमारी दृष्टि तितर बितर हो जाती है या दहीक हो जाती है तो इसको क्या कहेंगे? आत्मिक साक्षात्कार बराबर नहीं किया। साक्षात्कार मना जो समझ मिली है उसको हम अनुभव में नहीं लाया है। बुरी दृष्टि रखने से क्या होगा? सामने वाले को भी उसका असर आने से वो भी उधर से वही रिप्लाई करेगा, वो भी ईर्ष्या द्वेष में, फिर वो भी खुद भी रहेगा, हमको भी फिर उसी नजर से देखेगा। रूहानी दृष्टि, रूहानी ताकत न होगी तो हम पवित्र नहीं रह सकते, चाहे अपने प्रति चाहे दूसरों के प्रति, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति दृष्टि वृत्ति होती है। दृष्टि में रूहानियत हो, आत्मिक दृष्टि हो, सदा रहे, भाई भाई की ड्रिल करते रहे। जैसे आंखों के लिए कुछ एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर लोग, दवाई भी देते हैं, इनके जो अष्ट चक्र बनाया उन्होंने ऐसे ऐसे घूमने से आंखों ऊपर बनाया, ड्रॉप भी डालते हैं। एक बाबा की ही, बाबा को ही नैनों में ऐसे बसा लो जो कभी भी वो नैनों से दूर हो न सके। जैसे काला है अंदर, वो कभी गायब हो जाए तो क्या हो जाता है? डर जाते हैं, डर लगता है। वो काला गायब हो जाए तो ऐसे नयनों में बाबा ही संभाले समाये रहे। ऐसा कोमल नयन भी न हो जो नयनों से नीर बहता रहे। थोड़ा भी कुछ कही है मूड ऑफ फीलिंग प्रूफ फीलिंग देवी स्नेह को आंसू तो वो भी नहीं गिरना चाहिए। नयनहीन मना ज्ञान का तीसरा नेत्रहीन अंधे उल्टे कर्म ही करेंगे। अभी बाप आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सुलटा कर्म करने के लिए सिखा रहे हैं, जिसे हमारे नयन चयन जब फर्क दिखाई देने लगेगा तब कहेंगे नयन कमल, नयन कमल, नयन हस्त बोलते हस्त कमल। ये कैसे मतलब उस श्रीमत अनुसार चल के उस नयनों में हमारा बाबा ही समाया हुआ रहे और हमारे नयन चयन में कुछ फर्क दिखाई दे, परिवर्तन आ जाए, तब कहेंगे नयन कमल। आज नयनों की बात चल रही है ना, ऐसे सारे ऑर्गन्स के द्वारा बाबा कहते हैं कि सबको सुख का अनुभव होना चाहिए। नयनों से अतिंद्रिय सुख देते रहना तब कहेंगे नजर से निहाल करने वाले। पुराने चीज को योग बल से नया करना है, नयनों से, योग बल के नयनों से नया बनाना है। बाबा के समान नयनों के इशारों से सब कुछ जान लेना है। एक नयन में नूरानी नूर दिखाई देवे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नयनों के इशारे से किसके मन में क्या चल रहा है वो जान सकेंगे। हमारा देखना ही बोलना हो जाए। कभी कभी दृष्टि देते समझा नहीं कि तुम मैंने क्या कहा, वो अलग बात है, लेकिन समझनी, शब्दों में बताने की जरूरत है क्या, समझ जाना चाहिए। समझदार को इशारा काफी बोलते हैं, हाँ, लेकिन वो वाइब्रेशन से समझ जाते क्या कहना चाहते हैं। नयन सारे शरीर में हमारा सबसे सूक्ष्म पार्ट है, सभी अंगों में, जैसे ऊपर बताया। और नयनों में जो भी नूर है वो कितना सूक्ष्म है, बिंदी है ना, तो नयनों में समाने का रूप बिंदी होता है। नयनों में बिंदी की कमाल है, जिसके नयनों में बाप समाया हुआ है तो दूसरा कोई कैसे समा सकेगा। हरेक के नयनों से ये अनुभव हो कि इनके नयनों में कोई विशेषता है, इसके लिए कुछ भी हो जाए सारा दिन नयनों में निरंतर बिंदु बाप को समा के रखना है, अर्थात उसकी याद में रहना है। इससे क्या होगा, हमारी दृष्टि बाधित नहीं हो सकती, कोई मना उसके ऊपर कोई डस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक लगाया हुआ है। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में लगाते हैं ना सुंदर लगने के लिए, आंखों में कुछ बदली करते रहते हैं, वो उस तरह से याद का कुछ ऐसा बना के डालना चाहिए हम सबको, वह बाबा ही दिखाई दे। तो आंखों का मिचना तो कर्म है, और मन में कुछ भी, हमारी आंख बंद होती, उसमें ये भी था नेट में, जो आंख में हमारी पलके बंद हो जाती ना, जैसे सांस ही कितनी चलती है हम काउंट कर सकते हैं, सारे दिन में 24 घंटे में कितने श्वास चलते हैं, ये तो हर एक के तबियत के ऊपर होती है, कम ज्यादा हो सकती है। आंखें बोलते करोड़ों में बंद चालू होता है, नींद में भी बंद चालू होता रहता है, उसमें लिखा था नेट में, हाँ, उसमें बहुत सारा। तो कहने का मैंने उसको ऐसा लिया है कि बाबा वो कहते हैं कि श्वासोश्वास मरती मेरी भूले नहीं, आप लोग ज्ञान स्वरूप माना क्या, दिन रात बाबा 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 ज्ञान स्वरूप, हाँ, नेचुरल हो जाए। जैसे कल का स्लोगन था ना, ज्ञान योग नेचुरल नेचर में आ जाए, उसके लिए क्या चिंतन था, उसके लिए क्या किया जाए, हा? कल का टॉपिक के अनुसार सब चिंतन किए होंगे हम। इसमें हमेशा आंखों के सामने व आंखों में वो लगाते हैं, वैसे लगा के रखना चाहिए, बाबा भूले ही नहीं, क्योंकि बाबा को भूलने से ही हमारे से अनुचित कार्य हो जाते हैं। इस तीसरे नेत्र में जैसे कहीं धरना देते हैं आजकल, तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहला समझाने के बाद भी नहीं समझते तो आंसू गैस छोड़ते हैं, उससे क्या होता है, आंखों में पानी आता है सबके। तो जो करना चाहिए, जो करने जो उनको सोच के आए थे वो नहीं कर पाते, अवरोध नहीं डाल सकते, तो उनको शांति से वापस मन शांत कर सकते हैं। तो तीसरे नेत्र में माया क्या करती है, कुछ न कुछ धूल मिट्टी डालती रहती है यहाँ भी। इससे क्या होता है, हम जो जिस जैसे अनुभव करना चाहते हैं, जिस भाई बहनों को जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसा देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, तो क्या हो जाता है, तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। तीसरे नेत्र से अकल्याण दिखाई दे ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कंटिन्यू चालू है। तो क्या करना क्या है अभी हमको, सबको त्यागी तपस्वी की दृष्टि से देखो, वो है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन हमको उसी नजर से देखना है, करना तो है ना उसको, इसीलिए तो बीके बना है, नहीं तो वो एक गीत है ना फिल्म का, ना मैंने सिग्नल देखा ना तूने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। अभी बाबा कहते हैं चाहे कोई भी दोषी हो, किसकी भी गलती हो, पर यहाँ इसमें थोड़ा भी अलबेले नहीं रहना चाहिए, सावधानी हटी, थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कभी आंख धोखा न दे, नहीं तो दोष दृष्टि मोतियाबिंद हो जाए, अपने को भी दूसरों को भी, साथ में होता है दोनों को। शारीरिक संबंध में आना अर्थात आंख का धोखा खाना, यूं तो कोई भी कर्मेंद्र धोखा न दे, तो इसके लिए हरेक नारी को क्या समझना है, शरीरधारी में कौन है, हर बहन शक्ति है, देवी है, माताजी है, और भाई को क्या समझना है, हनुमान है, महावीर है, देव है, पुण्य आत्मा है, है? एक बार बाबा ने कहा था अव्यक्त मुरलियों में कि कभी कभी ऐसा समझो जैसे मैं इस शरीर में आता हूँ, बाप दादा गुजर दादी के तन में, ऐसे आप भी अपने आप को समझो, प्रैक्टिस करना चाहिए। आज भी है बाप दादा बन के अपने लिए आप प्रैक्टिस करें, पर दूसरों को बोले नहीं, नहीं तो बड़ा आया बाप दादा बोलेंगे। बहुत अच्छा लगता है, हमने किया था। तो इसके लिए जैसे सचिन भाई हमेशा क्लास में कहते हैं कि एकांत का अभ्यास होना चाहिए, एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए, एक रस अवस्था होनी चाहिए। तो ये इसकी गहराई में जाके एक टिक किसी भी बात को लेके, किसी ज्ञान के पॉइंट को लेके उसमें एक टिक टिके रहना तो अनुभव होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी, काफी टाइम तक उसका असर रहता है। तो इसका अभ्यास और अनुभव बढ़ाते रहना है, कम से कम सुबह जैसे ड्रॉप बोलते हैं सुबह शाम डालना, तो सुबह शाम तो ज्ञान योग का ऐसा ड्रॉप डालना है आंखों में कि नेचुरल इसका अभ्यास हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, दवाई देते हैं डॉक्टर लोग, हम लोग इतना ध्यान से वो भी नहीं करते, तो क्या होगा, डॉक्टर क्या करेंगे इसमें। अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज भी करते रहे तो इस रोग को निजात तो नहीं लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं, नहीं तो संगम पर भगवान से बेमुख हो जाएंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि निश्चय विश्वास भावना सब खत्म हो जाता है इसकी उसकी बात सुनते देखते, क्योंकि वो बुद्धि में घर करता है, वो बुद्धि मना बुद्धि में बुद्धि नेत्र तो उसमें टष्ट जाता रहता है। तो भावना खत्म हो गई एक बार तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता जैसे पहले बताया। तो ये फिर बाद में क्या होता है, इससे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ऐसा लगता है मैंने अपनी सारी एनर्जी को यूं ही गवा दिया। ये पश्चाताप बहुत अशांत परेशान दुखी बेचैन कर देगी अंत में, फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं। और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थिति को किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि इतने साल से तो मधुबन में रहता है फिर भी वही गीत गाता है, तो क्योंकि लज्जा आएगी, सहन भी नहीं होता, लज्जा भी आएगी और सहन भी नहीं होता है, कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसी बीमारी होगी, फिर नई बीमारी, बीमारी में नई बीमारी, तो इसका इलाज क्या हो सकता है। यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साक्षी ये दृष्टि के द्वारा पीछे देखने वाला दृष्टा कौन है, ये हमको अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के द्वारा अंदर सब जाता भी है बाहर निकलता भी है, क्योंकि हम किसी के द्वारा देना भी है ना, बाबा का जाएगा तो बाबा का जाएगा आंखों के द्वारा, दृष्टा दृष्टि, और इस तन में मन को मन से देखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। एक बार बाबा ने बोला था, तन में मन को मन से देखना है तभी ये मन मना बोल सकते हैं, और उसी के द्वारा इस मोतियाबिंद का कंट्रोल हो सकता है। ओम शांति।